कथा वस्तु पृष्ठ संख्या 27। कीना नामक नगर में याकूब नाम के एक नबी रहते थे। उनकी 7 पत्नियां थीं, जिनसे 12 पुत्र हुए। उनका सबसे छोटा पुत्र यूसुफ परम रूपवान था, वह पिता को अत्यंत प्रिय था। यूसुफ के प्रति पिता के अपार स्नेह को देखकर अन्य भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। एक रात यूसुफ ने अद्भुत स्वप्न देखा और अपने पिता को स्वप्न के विषय में बताया कि 11 ग्रहों के साथ सूर्य और चंद्रमा उसके सामने नतमस्तक हुए थे। पिता ने यह स्वप्न अपने भाइयों को बताने से मना किया, परंतु यूसुफ ने स्वप्न की बात भाइयों को बता दी। इस बात को सुनकर भाइयों को घोर ईर्ष्या हुई उन्होंने यूसुफ की हत्या का षड्यंत्र रचा। वे यूसुफ को फुसलाकर भेड़ों को चराने के बहाने अपने साथ जंगल में ले गए। वहां यातना देकर उसे अंधे कुएं में डाल दिया। यूसुफ के रोने तथा बार बार अनुनय विनय करने का उन बेरहम हत्यारे भाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन भाइयों ने बकरी के खून में यूसुफ के कपड़े रंग कर पिता याकूब को दिखाया और कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। यह दुखद समाचार सुनकर पिता याकूब पुत्र शोक में विकल हो उठे और रो रोकर अपनी आंखें खो दी। उनका जीवन गम के अंधेरे में डूब जाता है। इधर यूसुफ को कुएं में पड़े 7 दिन बीत गए। अगले दिन बंजारों का एक काफिला आकर जंगल में उसी स्थान पर रुका। अंधे कुएं से यूसुफ की दर्द भरी पुकार सुनकर काफिले के नायक ने अपने साथियों के सहयोग से यूसुफ को बाहर निकाला। संयोगवश उसी समय यूसुफ के भाई भी वहां पहुंच गए। उन्होंने यूसुफ के विरुद्ध नायक से शिकायत की कि हमारा दास है और चोरी के अपराध के कारण इसे कुएं में डाल दिया था। भाइयों ने यूसुफ को उन बंजारों के हाथों थोड़े से दाम में बेच दिया। बंजारे यूसुफ को जंजीर में बांधकर मिस्र देश ले गए। रास्ते में यूसुफ ने मां की समाधि देखी। वह समाधि से लिपट कर रोने लगा। इस कारण एक दास ने उसकी बड़ी निर्ममता से पिटाई की। यूसुफ के प्रति इस निर्मम व्यवहार को देखकर प्रकृति भी अत्यंत दुखी हो उठी। मां की समाधि कांपने लगी। चारों ओर भयानक तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे अफाट अंधकार में सब कुछ विलीन हो जाएगा। खुदा के इस कहर का एहसास होते ही नायक ने यूसुफ से क्षमा याचना की और उसकी बेड़ियां कटवा दिया। वह यूसुफ को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर ससम्मान अपने साथ मिस्र देश ले गया। वहां यूसुफ को अपने पिता की बहुत याद आती थी। वह हमेशा पिता के वियोग में अश्रुपात किया करता था, पर किसी प्रकार कुछ नहीं बताता। जुलेखा पश्चिम की मगरिब देश के सुल्तान तैमूस शाह की अपूर्व सौंदर्यमयी पुत्री थी। एक रात उसने स्वप्न में एक परम सौंदर्यवान युवक को देखा। जागने पर वह उसकी याद में व्याकुल हो उठी। हर समय वह उदास रहती। धीरे धीरे उसका खाना पीना आमोद प्रमोद सब कुछ छूट गया। आंखों से हमेशा अश्रु बहते रहते थे। अपनी सखियों से भी वह कुछ नहीं बताती। एक दिन धाय के बारे में पूछने पर जुलेखा ने अपने दुख का कारण बताया और स्वप्न में देखे युवक को प्राप्त करने का उपाय पूछा। पर समस्या यह थी कि उस युवक का नाम पता कुछ भी तो नहीं मालूम था। प्रिय की याद में जुलेखा का वियोग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी स्थिति दयनीय होती गई। इस बीच जुलेखा ने पुनः स्वप्न में उस स्वप्न प्रिय को देखा, किंतु इस बार भी वह प्रे के नाम पता नहीं पूछ पाई। उसकी विरह व्यथा अत्यधिक बढ़ जाती है। वह पागल सी हो जाती है। उसे विक्षिप्त देखकर पिता ने उसके पैरों में बेड़ियां डलवा दी। एक रात पुनः जुलेखा को उसी स्वप्न प्रे के दर्शन होते हैं। तीसरे स्वप्न में यूसुफ भी जुलेखा को अपनी प्रीति का विश्वास दिलाते हुए अपना नाम पता बता देता है। उसने स्वयं को मिस्र का वजीर बताया। इस तरह स्वप्न प्रिय का परिचय पाकर जुलेखा उसे पाने का निश्चय कर लेती है। उसके लिए यह जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। धाय माँ की सलाह पर सुल्तान ने जुलेखा का विवाह मिस्र देश के वजीर के साथ करवा दिया। परंतु विवाह के पश्चात जब जुलेखा ने वजीर को देखा तब उसे लगा कि वह उसका स्वप्न प्रिय नहीं है। वह बहुत ही निराश और दुखी हुई। वह मृत्यु का वरण करना चाहती है, किंतु धाय के सांत्वना देने और समझाने पर बीमारी के बहाने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए हृदय से यूसुफ से मिलने की आशा संजोए जीवन व्यतीत करने लगती है। अहर्निश वह यूसुफ की स्मृति में खोई हुई अश्रुपात करती रहती थी। कभी वह दुखी होकर कहती कि जिसके लिए लाज धर्म सब कुछ छोड़कर मैं मिस्र देश आई, उसी ने मेरे साथ छल किया। एक दिन कबीले का नायक सौदागर यूसुफ को दास बनाकर मिस्र के चौक में बेचने के लिए आता है। यूसुफ के अपूर्व रूप को देखकर सभी लोग हैरान हो उठते हैं। उसके सौंदर्य की चतुर्दिक चर्चा होने लगती है। जुलेखा भी उसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर धाय के साथ देखने जाती है। वह देखते ही उसे पहचान लेती है कि यही उसका स्वप्न प्रिय यूसुफ है। जुलेखा के निवेदन पर निःसंतान वजीर बादशाह की अनुमति पाकर पुत्र के रूप में रखने की मंशा से यूसुफ को खरीद लेता है। जुलेखा यूसुफ को अपना स्वप्न प्रिय होने का विश्वास दिलाती है। वह अनेक प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करती है, परंतु यूसुफ का ध्यान जुलेखा की ओर नहीं जाता है। यूसुफ में काम वासना जागृत करने के लिए जुलेखा अनेक प्रयास करती है, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए। पल भर के लिए यूसुफ आकर्षित होकर जुलेखा को आलिंगन अवश्य कर लेता है, किंतु तत्क्षण कर्तव्य बोध होने के कारण वह जुलेखा के आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर लेता है। जुलेखा बलात् यूसुफ से संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। यूसुफ महल से भागकर अपना बचाव करता है। भागते हुए यूसुफ के कुर्ते के पिछले हिस्से का एक टुकड़ा भर जुलेखा के हाथ में आता है। जुलेखा रुष्ट होकर अपने पति वजीर से यूसुफ पर दुष्चरित होने का आरोप लगाती है। यूसुफ के कुर्ते का पिछला हिस्सा फटा देखकर वजीर जुलेखा को ही दोषी समझता है, किंतु प्रतिष्ठा हानि के डर से यूसुफ को दंडित करना आवश्यक समझता है। यूसुफ को कारावास की सजा होती है। जुलेखा उसे दंड दिलाकर वियोग और प्रायश्चित की आग में जलने लगती है। नगर में सर्वत्र जुलेखा के दुष्चरित्रता की चर्चा होने लगती है। जुलेखा अपनी सफाई पेश करने के लिए नगर की स्त्रियों को निमंत्रित करती है। वह कारागार से यूसुफ को बुलवाती है। यूसुफ के सौंदर्य से अभिभूत स्त्रियां अपने हाथ में दी गई छुरी से नींबू के स्थान पर अपनी उंगली काट बैठती है। जुलेखा के बताने पर वे स्त्रियां लज्जित होती हैं और उससे क्षमा याचना करती हैं। यूसुफ ने कारागार में दो बंदियों द्वारा देखे गए स्वप्न का फल बताया। एक बंदी ने स्वयं को मदीना निचोड़ते तथा दूसरे ने सिर पर रखी रोटियां खाते हुए पक्षी को देखा। स्वप्न फल बताते हुए यूसुफ ने कहा कि मदीना देने वाला व्यक्ति तो राजा को मदीना पिलाएगा तथा दूसरा सूली पर चढ़ाएगा। पृष्ठ संख्या 30। स्वप्न सत्य सिद्ध होता है। यूसुफ की ख्याति एक स्वप्न विश्लेषक के रूप में फैल जाती है। एक बार मिस्र के सुल्तान का स्वप्न विश्लेषण करते हुए यूसुफ ने बताया कि तुम्हारे राज में 7 वर्ष तक खूब वर्षा होगी और अपार अन्न पैदा होगा। पुनः 7 वर्ष तक भयानक अकाल पड़ेगा। सुल्तान यूसुफ द्वारा किए गए स्वप्न संबंधी व्याख्या से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने वजीर से यूसुफ के कैद किए जाने का कारण पूछा। जुलेखा ने सब कुछ साफ साफ बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। वजीर ने जुलेखा को उसकी दुष्चरित्रता के लिए परित्याग कर दिया। सुल्तान यूसुफ को कारागार से मुक्त करके अपना वजीर बना लेता है। यूसुफ की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। दुर्भिक्ष के कारण यूसुफ के भाई भी अन्न की तलाश में मिस्र पहुंचते हैं। वर्षों उपरांत भी यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है। वह उन्हें बहुत सा अन्न देता है और उनके माध्यम से पिता याकूब के पास संदेश भेजता है। यूसुफ का समाचार पाकर पिता याकूब बहुत प्रसन्न होते हैं। वह यूसुफ से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। इस प्रकार 30 वर्षों के पश्चात यूसुफ की अपने पिता से भेंट होती है। कालांतर में मिस्र के वृद्ध सुल्तान ने अपनी गद्दी यूसुफ को सौंप दी। इधर जुलेखा की दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। वह यूसुफ की याद में निरंतर विलाप करती है। उसकी नींद, भूख, प्यास सब कुछ चली जाती है। धन, ऐश्वर्य, रूप, सौंदर्य, यहाँ तक कि आँखों की ज्योति खोकर भी वह यूसुफ के लिए दर दर भटकती रहती है। 40 वर्ष की चिर प्रतीक्षा के बाद उसका यूसुफ से मिलन होता है। याकूब की कृपा से जुलेखा को पुनः पूर्व रूप वह प्राप्त हो जाता है। 16 श्रृंगार तथा 12 आभूषण से सुसज्जित जुलेखा का शुभ मुहूर्त पर यूसुफ से विवाह संपन्न होता है। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है, परंतु कुछ समय के पश्चात जुलेखा सांसारिक प्रेम से विरक्त होकर ईश्वरीय प्रेम की ओर उन्मुख हो जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि जितना समय उसने एक मनुष्य के लिए गंवाया, उतना यदि परमात्मा को पाने के लिए लगाया होता तो उसे मुक्ति मिल जाती। इस आत्मज्ञान के साथ वह तन से यूसुफ की सहचरी होकर भी मन से एकदम अलग हो जाती है। जुलेखा के प्रति यूसुफ का प्रेम भी कम नहीं है। वह जुलेखा की अलग साधना से बाधक नहीं बनता है। वह जुलेखा को सांसारिक चिंताओं से मुक्त करने का यथासंभव प्रयत्न करता है। कालांतर में वृद्धावस्था को प्राप्त होकर यूसुफ की मृत्यु हो जाती है। उसे निष्प्राण देखकर जुलेखा मूर्छित हो जाती है। 3 दिन तक मूर्छित रहने के पश्चात जब जुलेखा होश में आ जाती है, तब वह अपने सारे श्रृंगार उतार कर धरती पर सिर पटक पटक कर विलाप करने लगती है। वह अपने अतीत जीवन की स्मृतियों में खो जाती है और पश्चाताप करती है। प्रीतम के बिना वह जीवन को धिक्कारती है। उसे अपना सारा जीवन सूना सूना लगता है। तड़प तड़प कर वह यूसुफ की समाधि पर प्राण त्याग देती है। छार छार में मिल जाता है। यूसुफ और जुलेखा की समाधि एक ही स्थान पर बनाई जाती है।